आपकी नहीं जाए। उन्होंने कहा कि अपने चित्त को भगवान में लगाओ और जो जो लीलाओं का श्रवण कराया उसमें चित्त को स्थिर कर दो। किसी बात मरने की चिंता तो नहीं, सांप काटेगा मुझे इसकी चिंता है, हम तो आपकी लीला कथाओं का श्रवण चिंतन और कीर्तन करते रहे, लाख सांप एक साथ में जैसे तभी हमको कोई चिंता है। सबसे भयंकर वो सांप नहीं बल्कि संसार रूपी सांप है। संसार की आसक्ति जो है ये सांप, ये जिनको काटेगा ये गड़बड़ कर देगा, इसलिए आपने हमको उससे हमारी रक्षा कर दी है। संसार रूपी काल तक हमारे पास नहीं आएगा, आप यही आशीर्वाद दीजिए। आपने जो कुछ सुनाया है मैं अपने चित्त को उसमें स्थिर कर कल्ले और मस्तु तथई ऐसा नहीं और कह करके पूछ। इधर में वह सब एक ब्राह्मण का वेश बनाकर देखा जा सप्तम दिवस है, अब कथा भी समाप्त हो गई, कथा रहते हुए मैं नहीं जा सकता, कथा का डर है, इसलिए कथा समाप्त होने पर ही जाऊंगा। वहां पर कथा में काल का अधिकार नहीं, जहां पर भगवान की कथा हो वैष्णव लोग भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, जहां पर गले में तुलसी की माला हो, तिलक हो, जिसने एक बार भी अपने जीवन में भगवान को प्रणाम किया है, जमराज जी ने अपने दूतों को कहा खबरदार वहां मत जाना, इसलिए वहां तो प्रवेश नहीं कर सकता। जब कथा समाप्त हो गई प्रतीक्षा कर रहा है, बस वहां से ब्राह्मण का वेश बनाया और वहां से चला। रास्ते में एक कश्यप नाम के एक ब्राह्मण से भेंट हुई, झोली भरकर चलता आ रहा था लेकर। महात्मा जी आप कौन है? ब्राह्मण जी तो मैं कश्यप ब्राह्मण। कहाँ जा रहे हैं? परीक्षित महाराज की सुना, किस लिए जा रहे हैं? सुना कि उनको तक्षक काटेगा और मैं उनको काटने के साथ साथ में जीवित कर दूंगा, आप लौट जाइए, आपके द्वारा नहीं होगा। और जरूर होगा, हमारे मंत्र में ऐसी शक्ति है, तक्षक का पाप भी काटेगा तो उसको हम उतार देंगे। कहिएगाक्षक तो यही पर परीक्षा हो जाए, मैं अभी बस तक्षक जा रहा हूँ, यहीं पर परीक्षा हो जाए। एक पीपल का बड़ा भारी पेड़ था, दरअसल हरा भरा, उसकी डालियां सब भरी भरी हुई। तक्षक ने देखो इसको मैं काटता हूँ और अभी जल करके फसल हो जाएगा, आप इस वृक्ष को फिर नया बना दीजिए जैसा कहता है तो मैं समझ गया ठीक है। बस तक्षक के क्रोध में भर करके सांप का रूप बनाया और ऐसा मार और मारते हैं, एक सेकंड के अंदर में एकदम जड़ समेत सब जो जल करके खाक हो गया। वो ब्राह्मण हंसता हुआ बोले जो ठीक है, झोली अपनी संभाली, निकाला, रगड़ करके जड़ी बूटी तैयार की और मंत्र के साथ में पूज करके और अपने हाथों में लेकर के पेड़ की जड़ में जहां पर वो जल करके फर्स्ट हो चुका था वहीं पर मंत्र साथ साथ में अंक उसमें से निकला, डालियां निकलने लगी, पत्ते ले आओ, एक मुहूर्त के एक सेकंड के अंदर में पूरा जायका का जैसा ब्राह्मण जी के चरणों में वो तक्षक गिर पड़ा। महाराज आप तो सचमुच में परीक्षित को जीवित कर रहे हैं, जाकर के आपको मिलेगा क्या? तो मिलेगा हमको रुपए पैसे मिलेंगे, रत्न जवाहरात गिराई ये सब मिलेंगे, मैं इसको लेकर के चला जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, यदि वही मैं दे दूं, नहीं भाई मैं उसको जाना है, नहीं हमारा मंत्र भी फल हो जाए। कहते कहते मैं सोनिया और अस्थियों की एकदम फेरी लगा दी, ब्राह्मण को कहीं मुंह से लात कपटने लगा दी, इतना माल छोड़ करके अब वहां पर इतना तो मिलेगा नहीं। जब थोड़ा सा संकोच कर रहा था जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, इतने में उसने और डबल कर दिया। अब तो वो संदेह भी मिट गया, अब जाकर के क्या होगा, यहीं से लौट चले हम, जीवन भर हमारे जितने वंशज लोग हैं वो सभी खर्च करेंगे तो ये खर्च नहीं होगा, बस ले लिया भर करके दोनों तक में और दबा करके वहां से और तक तक गया, वहां पर प्रवेश किया तथा उन्होंने अपनी समाधि लगाई जैसे कि उन्होंने कहा था सुखदेव गोस्वामी, अपने समस्त शरीर से इंद्रियों को एकाग्र करके उसमें से अपनी आत्मा को लेकर के ब्रह्मांड में स्थित करके और वहां से एकदम सीधा गोलोक वैकुंठ धाम में पहुंचा, ब्रज में पहुंचा दिया गोलोक के। और उनका शरीर केवल मरने के बाद में जैसा रहता है वैसा हो गया, केवल उसका उपरा रहा। तब खर्च आया, उसको तो पूरा करना था, इसलिए उसने उस शरीर को, निर्जीव शरीर को उसने काटा और वो जल करके उसके पहले परीक्षित मारा। जब ये सब ये हो गया, सभा भी समाप्त हो गई, लोगों ने समझा, मूर्ख लोगों ने समझा, ये सांप ने काट दिया, ये मर गए। जो साधारण जो बुद्धिमान है भक्त लोगों ने सोचे कि आज परीक्षित महाराज की गति उनको मुक्ति हो गई। आज जो प्रेमी भक्त थे उन्होंने देखा आज साक्षात गुरु वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं में वो पूछ गए, हुई क्या बात, उनकी कौन सी गति हुई, मुक्ति मिली, न सांप के काटने से मर गए, न गोलोक वैकुंठ हुआ, न क्या हुआ। ठीक मरने के पहले 8 घंटे पहले उनकी मैया ने कहा कि बेटा मैं तो ठाकुर की इतनी ज्ञान की बातें बराबर की बात नहीं समझ में ले, मैं तो साधारण एक महिला बुद्धि तेज नहीं, तुम हमारे लिए ऐसे सरल सहज भाषा में थोड़े से शब्दों में ये भागवत का सार हमको बतला दो बेटा जो मैं समझ जाऊं। तब उन्होंने भागवत का भी सार, जिसको बृहद भगवतानंद में कहते हैं, जिसको सनातन गोस्वामी ने संकलन किया है, वो उनको मैया दे, उत्तराधि की मैया है ना, माता जी से जो बात नहीं कहनी चाहिए वो कह रहे। उनके पति तो गोलोक चले गए हैं अभिमन्यु, और मैया है, मैया से दे। गोपियों ने जैसे कृष्ण को प्रियतम माना, तुम भी कृष्ण को वैसे ही प्रियतम मानो, बेटा मत मानो, प्रभु वो प्रभु है और मैं उनका दासी हूं ये मत मानो, तुम कृष्ण को प्रियतम मान करके गोपियों के भावों को लेने की चेष्टा करो, उन लीलाओं का स्मरण करो, उन्हीं लीलाओं का कीर्तन करो और उन्हीं का चिंतन करो एकमात्र, अब तुम्हारी भी गोपियों की अनुगत्य में कोई गति होगी। यदि अपनी माता को उन्होंने ये उपदेश दिया तो वो इस उपदेश में प्रतिष्ठित है कि नहीं है, तो उनको मुक्ति हो गई या वैकुंठ की प्राप्ति हुई या मुक्ति हुई, न बोलो ब्रज में गोपियों जैसी उनकी गति की कौन सा ठीक है अनुमान उसके लगाइए। इसलिए अपनी मैया को जो उपदेश दिया उसमें प्रतिष्ठित होकर के उसमें चले गए, साधारण साधक नहीं है, सुखदेव गोस्वामी जी से कम नहीं है, जैसे सुख गोस्वामी जी सभाओं में कह रहे हैं और उनसे 1000 उन्नत वहां पर ऋषि महर्षि लोग हैं, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण की गोदी में कभी खेले हैं, कृष्ण ने उनका चुंबन करके प्यार किया है सुखदेव गोस्वामी को, और परीक्षित महाराज जी को उनके माता के गर्भ में उनको जाकर के रक्षा की, जब पैदा हुए तो उनको जीवित कर दिया और इसके बाद में अपनी गोदी में लेकर के खिलाए, प्यार किया, चुंबन किया। उनको संसार भय आ सकता है, वो साधारण व्यक्ति थे, मैं तो समझता कि सुखदेव गोस्वामी से कम नहीं उन्नत ही हूं, इसलिए ऐसा नहीं समझा जाए कि प्रत्येक वक्ता श्रोताओं से भी कोई उन्नत ही है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि श्रोता में भी ऐसे हो जो हरि कथा का स्वादन करने के लिए श्रोता बन करके दिन ही होकर के बैठे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वक्ता भी श्रोताओं को यथायोग्य सम्मान दे, और नहीं तो बलदेव प्रभु जी आ जाएंगे और गला उतार करते रहेंगे, तो भागवत पाने का अधिकारी दीनता हीनता नम्रता होनी चाहिए, वहां पर भगवत भक्ति रूपी भगवान की कृपा रहती है, शिखर पर नहीं पहाड़ों के ऊपर में वर्षा नहीं टिकती, वो पानी नीचे आएगा ना, तो जहां पर नम्रता है, विनय है, धन्य है, वैष्णवता है, वहां पर उनकी सब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज को सांप नहीं काटा, उनकी मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति से बहुत ऊपर पहले ही से ही है, वो भगवान के एक परिषद परिकर है, लीला में थे। अब हम समझते हैं कि जब ऐसी कथाओं को सुन करके और ऊपर बढ़ते हैं, जब कृष्ण की लीला समाप्त हो गई, कृष्ण जबकि चले गए सब लोगों को लेकर के, लोगों को ये संदेह होता है कि उस बहेलिए ने बाण मारा और कृष्ण को वो बाण लगा और कृष्ण भी मर गए और उनके पंचभूत शरीर को लोगों ने दाह संस्कार करके समुद्र में वो कौन सा प्रभाव तीर्थ में जला। लोग ऐसा कुछ लोग समझते हैं, परम बुद्धिमान जो अपने को समझते हैं, अपनी बुद्धि का कसरत करते हैं वे लोग, इनको ऐसा मत समझ। भागवत में ही ऐसा लिखा गया है, किसका कारण उसको एक था मदारी। मदारी जानते हैं जो बंदरों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के रस्सियों पर दौड़ते हैं, उसकी पत्नी खड़ा लेकर के सिर पर दो बांसों पर रस्सी को खींच देते हैं और उसी के ऊपर में एक बांस का ले लेती है, बैलेंस आती ही उसी पर नृत्य करती है रस्सी के ऊपर और नीचे ढोलक बजाता है वो मदारी। ऐसा ही एक मदारी अपने दो पुत्रों को और अपनी पत्नी को, नवजुवती पत्नी थी, दुबली पत्नी सी, बड़ी तेज थी, उसको लेकर के एक राजा के दरबार में आए। वहां पर रस्सियों को दो बांसों में खींच करके और उस पर उसकी स्त्री चक चक करते हुए चढ़ गए, सिर पर घड़ा घड़ा के ऊपर में घड़ा, घड़ा के ऊपर में घड़ा, हाथों में बांस लेकर के और उस रस्सी पर नृत्य करते हैं। कभी ऐसे नाचती है, कभी ऐसे नाचती है, घड़ा नीचे घड़ा को नहीं पकड़ी है। इस प्रकार से नित्य कौशल दिखलाया, रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। जब नीचे उतर करके आई, रानी ने अपना वो हार उसकी पत्नी के गले में डाला। उस समय में उसके दोनों लड़के उस हार को पकड़ लिए और पकड़ करके कहते, मैया मैं दूंगा, एक मैं, एक ही नौ, दोनों रिष्ट पुष्ट अच्छे लड़के, पगड़ी बांधे हुए हैं, बहुत सुंदर उनका ये कपड़े हैं और तलवार डटती है। भैया मैं दूंगा, काटा जी मैं दूंगा, दोनों उस हार को खींचने लगे। वो रमणी ने अपना हाथ उतार करके और ऐसे छोड़ दिया और दोनों खींचने लगे, वो हट गए, वो उसको खींचेगा उसको खींचेगा, एकदम म्यान थी, उसने भी इसने भी, और उसने उस पर वार किया, उसने एक साथ में वार किया, दोनों कट करते गिर गया, हार बीच में गिर गया। वो जो रमणी थी नटकी, अरे हाय हाय हमारे दोनों लड़के मर गए, बस पास की जो तलवार पड़ी थी उसने लिया, वो अपने को काट करके वो भी मर गए, सारी हमारे लड़के और हमारी स्त्री मर गई, उसने भी तलवार दिया और उन्हें कटा मान हो गया। जहां पर आनंद बरस रहा था वहां पर शोक बरसने लग गया। रानी ने कहा कि बेकार का हाथ दिया, ये तो बहुत गड़बड़, हमको हाथ नहीं देना चाहिए था, ये अनर्थ का कारण है, हम इसके बच्चे परिवार सब मत गए। इसके बाद अपने अपने घर में सभी चले गए। दूसरे दिन राजा के यहाँ एक पत्र आया, महाराज हमने जो पहली हमारी स्त्री ने जो लीला दिखलाई और कला दिखलाई, आपने उसके लिए एक हार दिया था, वो हमारे पास में सुरक्षित है, और अंत में जो हम लोगों ने जो लीला खेल दिखलाई, आपने कोई पुरस्कार नहीं दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है कि हम मर गए हैं तो आप हमारे घर पर पहुंच जाइए, हम लोग आपका अभिनंदन करेंगे और हमारा पुरस्कार साथ में लाना चाहिए आपको। राजा ने कहा, रानी को, अरे वो दोनों जीवित हैं, सभी चारों जीवित हैं, अच्छा कभी हो नहीं सकता, आंखों से देखा, अरे होने तो चलो तो देखें। तो चारों रथ पर चढ़े, अपने मंत्रियों को और सब लोगों को लेकर के उसके घर पर गए। देखा जब मुस्कुराते हुए चारों दोनों लड़के दोनों बगल में और पति और पत्नी बीच में मुस्कुराते हुए माला लेकर के खड़े हैं। राजा और रानी का अभिनंदन किया, हमारा पुरस्कार दीजिए कल वाले का। यदि एक मदारी ऐसा कर सकता है, एक मैकेनिज्म के द्वारा, आंख बंद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अभी बीसी राय कलकत्ते का नाम सुना होगा, कलकत्ते में अभी वो प्रदर्शनी कर रहा है, वहां पर सब से बड़े बड़े सेना के अभिनय और बड़े बड़े लोग वहां पर एकत्रित थे। समय था 4 बजे से 5 बजे तक वो अपनी कला दिखलाए और वो सब लोग आकर के प्रतीक्षा कर रहे। वो आ नहीं रहा है, 4 बजा 4:15 बज गया, 4:30 बज गए। कब जब आएगा तो सबसे पहले उसको ढूंढेंगे। वो समय का मूल्य नहीं जानता है, बड़े बिगड़े थे सब। और कुछ देर के बाद में, थोड़ी देर के बाद में वो पान खाता हुआ बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए आ रहा है। तो पहले बताओ लीला, अपनी कला पीछे देख लेना, पहले बताओ जी इतना लेट क्यों किया। हम लोग सब तुम्हारे लिए गवर्नमेंट बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, अभी तुमको हम दंड देंगे। ये हजूर हमारी गुस्सा की माफ करें, आप लोग खड़ी देखिए तो ये क्या बजा है। देखा जी पहले तो बज रहा था, कहें आप देखा जी 3:04 बजने में 1 मिनट बाद देखो भट हमें ठीक समय पर आया कि नहीं पूछ, यही मेरी पहली चल रहा है। तो जब भी वैसे ये सब कर सकते हैं, आप लोग देखते हैं गला काट दिया, बक्से में बंद कर दिया। अरे इधर आ जा बेटा, बक्से से निकल करके आ गया पूरा का पूरा। और वो विश्व का कलाकार, समस्त कलाकारों का कलाकार, ईश्वरों का ईश्वर, वो ऐसी कला नहीं दिखला सकता जो बाण मेहरी हमारे मुंह को लगे नहीं और वो अपने शरीर से चले जाए और वो लोग समझे कि वो मर गया। आंख बांधना वो नहीं जानता, ऐसी कलाओं को नहीं जानता। विश्व ब्रह्मांड की पलक लगते झपते ही सृष्टि करके उसका प्रलय करते थे, फिर नई सृष्टि कर देगा और वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ये कला थी कृष्ण की, महामाया की ये कला, जोग माया की भी ये विधि। सब लोगों से देखते देखते ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने देखा ये तो तभी चले जा रहे हैं अपने परिकरों के साथ। प्रेमी भक्तों ने देखा जी ये अभी द्वारका में लीला कर रहे हैं और साधारण लोग देखा जो वैद्य ने बांधना और कृष्ण उसी से बढ़ गए। तुम लोगों को एक ही लीला के द्वारा दूसरे लोगों को वंचित करते हैं और अपने भक्तों को आनंद देने वाले। कभी कृष्ण नहीं मरते, मर गए तो अभी हम लोग भजन किस लिए करते हैं। कृष्ण नहीं मरते, इस लीलाओं को इस रूप में ग्रहण करते। और एक बतला दूं जिसमें लोगों को संदेह होता है, 500 पांडव वन में जा रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को राज्य देकर के अब उत्तराचल में जा रहे हैं। लोग सुनते हैं, हम लोग युधिष्ठिर आगे चल रहे हैं, पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जब अत्यंत ऊपर में चले जहां पर पहाड़ के पहाड़ एकदम बर्फ से जमे हुए हैं और गल रहे हैं, आज वहां पर पहुंच नहीं सकता जब चले हैं। परीक्षित ये सबसे पहले द्रौपदी जी वहां पर गिर गए, इसके बाद में चलते चलते युधिष्ठिर ने और जो जा रहे हैं आगे पीछे नहीं देख रहे जो कौन मर रहा है कौन रह गया कौन, सीधे चल रहे हैं, हर सब भगवान की चिंता करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में सहदेव गिर गए, तो भी खत्म हो। इसके बाद में नकुल जी गिर गए, इसके बाद में अर्जुन गिर गए, इसके बाद में भीम गिर गए, इसके बाद में अकेले रह गए वो महायान तक अकेले चले। एक कुत्ता पीछे लग रहा था वो भी चल रहा था। इतने में धर्मराज आए विमान के साथ, महाराज आपको स्वतः चलना है। कंज से ये कुत्ते को भी साथ दे दो क्योंकि हमारे साथ में आया है और तो कोई साथ में आया नहीं। तो नहीं कुत्ते को कह रहे हैं, अरे वो अर्जुन भीम नकुल सहदेव सभी लोग तो आपके साथ में आ रहे थे, उनको नहीं कह रहे हैं जो साथ में चलेंगे कुत्ते के लिए कर रहे हैं। हाँ मैं सुनते क्योंकि अभी तक तो कुत्ता भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये भी चल रहा है। ऐसा क्यों? तो कुत्ता हमारे साथ में आया इसलिए हमारा पास में कोई भेदभाव नहीं। इसके बाद में कुत्ता वहां पर धर्मराज थे, उनकी शक्ति की परीक्षा कर रहे थे, बस वो धर्मराज के रूप में प्रकटित हुए और विमान के द्वारा स्वर्ग ले जाए। बीच में पड़ा नरक, हाहाकार मच रहा है। जो जिसमान ये क्या है, ये तो नरक है। नरक में जितने पड़े थे भोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी से थोड़ा सा खा ले जाइए, आपके आने से सुगंधित वायु बहने लगी, हमारा सब जितना क्लेश था वो मिट गया, थोड़ी देर और चल। थोड़ी देर और इसके बाद में वहां से। अब इसको दो रूप में समझिए, एक तो जागतिक स्थूल बुद्धि से समझिए और एक समझिए पारमार्थिक रीति के अनुसार। स्थूल दृष्टि वाले कहेंगे द्रौपदी पांच पत्नियों की स्त्री थी और बीच बीच में उन्होंने कुछ अन्याय किया था। दुर्योधन का कदिया अंधा का बेटा अंधा, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ, सब लोग मर गए, उसी में लड़ता द्रौपदी का दोस्त था, इसलिए पहले गिर गई। इसके बाद में नकुल, इसके बाद में सहदेव, इसके बाद में अर्जुन ने भी जयद्रथ का वध अन्याय से किया, सूर्य को कृष्ण ने छिपा दिया, कहते मारो मारो मारो, तो मारा तो ये अन्याय किया, सूर्य तो छिप गया था चक्र से, उसको छिपा दिया। इसके बाद में चक्र को हटा देते, कहा जब इस सूर्य आ गया मारो, अभी दिन है हमारा। इसी प्रकार से दो बार नहीं बहुत बार अन्याय किया, द्रोणाचार्य को इसी प्रकार से मारा, अपने गुरु को मारा, इसलिए वो मान। इसके बाद में भी भगवान की एक बात को नहीं मानती, वो भी रेजू फिर भी मरा दिया, नरक इसलिए देखना पड़ा। भगवान ने कहो जो हाथी मारा गया है अश्वत्थामा मारा, भगवान के ऊपर में अश्वत्था है, खुदा के ऊपर खुदा खुदा की। अरे भगवान कह रहे हैं कि मारो, मर गया वो कह दो, किनको कह दो, कैसे कह दो, अश्वत्थामा तो मरा है, जिनको कहा जो हाथी मारो तो हाथी को मारता, जो देखो अश्वत्थामा हाथी मारा है, कहा जो मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं कहूंगा तो ये कहूंगा जो अश्वत्थामा मारा गया इसी गज हाथी मारा गया, वो नहीं ठीक है, इतना ही कहो। जरूर ने कहा हाथी अश्वत्थामा मारा गया, इतने कृष्ण ने संत बजाया और सब लोगों ने ऐसा बजाया जो उसके बाद की बात इसी गज सुनाई नहीं। कोई कहता है कि इसलिए उनका रथ नीचे चला गया और कोई कहता है कि उन्होंने थोड़ा सा गज नहीं कहा, समझ रहे हैं ना, उनको कहना चाहिए था कि हाथी मारा, किंतु कृष्ण ने उसको लुप्त कर दिया अपने संख्या। बात ऐसी नहीं, बल्कि उन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी, उन्होंने अर्जुन को दिखलाया गया कि सभी मरे हुए हैं, आत्मा निकली निकल गई और देखा समस्त विश्व ब्रह्मांड के जितने योद्धा महापुरुष थे कृष्ण के मुख में आए हुए हैं और सब मरे हुए हैं, इसलिए सब मरे हुए हैं, वो तो भगवान की इच्छा से हम ये शरीर जीवित हैं तो ये शरीर मरा हुआ है, इसलिए भगवान की बात नहीं मानने से उनको नरक देखना। परमात्मा की बात यह है के बातों पर चलते थे, उसको प्यारी सखी कहते थे, तो पांडव पर जितनी भी भीड़ आई द्रौपदी ने कहा प्रभु अब रक्षा कीजिए हमारी, दुर्वासा जी आ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने हाथ उला दी है साफ कर दिए। जब तक द्रौपदी नहीं खा लेगी और उसका मार करके उलाट करके नहीं रखेगी, लाखों आदमी आएंगे, करोड़ों आदमी आएंगे, उसको खिला देंगे, आज जिस समय खा देंगे और उसको साफ कर देंगे, उलाट करके रख देंगे, उस समय में कुछ भी नहीं। द्रौपदी जी खा लिया, हड्डियों को मार करके रख दिया, इसके बाद में आए दुर्वासा जी 7,000 शिष्यों के साथ, अभी खिलाओ प्रजाशासना का दीजिए। पांडव ने कहा द्रौपदी आप मेरे राज रखो, नहीं तो हम लोग मरे। द्रौपदी ने कहा जी हमारे तो वही गोविंद है, गोविंद जी आप बताइए। गोविंद जी मुस्कुराते हुए आए कृष्ण, बोले जैसे द्रौपदी सखी मुझे बड़ी भूख लगी है तुम खिलाओ, अरे इसी के लिए तुम आपको बुलाया जो उनको खिला, अच्छा अपनी हड्डिया ले आओ, अरे प्रभु हड्डिया में कुछ नहीं है सकते, आ तो तुम ले आ तो हड्डिया को मंगाया, बड़ी बार पीछे देखा उसको, देखा जो सब साफ है, एक साफ का तिनका बड़ी मस्तूर से उसमें कहीं लगा, हाथ लगाया अपने नखों में उसको निकाला और मुख में ऐसे देकर के पानी को ले आओ, पानी पिया और कटारी बोले तृप्तोस्मी तृप्तोस्मी, दिखा दिया उतने में दुर्वासा इत्यादि सब लोगों का पेट एकदम फूल करके तुम्बा हो गया, भगे। इसलिए द्रौपदी जी कृष्ण की सहेली हैं, द्वारकावासी रानियों से भी कम नहीं है, लक्ष्मी जी हैं, इसलिए पहले वो गुरु बैकुंठ में चली गई, उनको अति कष्ट चलने में जो बर्फ होगा इसमें कष्ट न हो, इसलिए आगे गई। ये परमार्थ की नकुल सहदेव बड़े भोले भाले हैं, कृष्ण के लिए विशेष भगवत्ता पर इन्होंने जोर रखा कि उनकी सबसे पूजा पहले इन्हीं लोगों ने ही कराया, प्रस्ताव दिया और पीछे से लोगों ने समर्थन दिया था, कृष्ण उसको भूल नहीं सकते। इसके कारण से युधिष्ठिर चले बर्फ में और भीम और अर्जुन चले, इनको पहले ले लेना चाहिए, आगे बढ़ करते एकदम गोलोक में पहुंचा। इसके बाद क्रमशः अर्जुन कृष्ण के प्रिय हैं उन दोनों से, इसलिए इनको पहुंचा ये लोग चल गए। अंत में भीम को लेकर के पहुंचा दिया और अंत में कृष्ण की बात नहीं मानने की वजह से वो अंत तक रहे और पूरा देखना पड़ा और नरक में करके जाना पड़ा। किंतु ये लोग कोई स्वर्ग में नहीं गए, कहां गए वो तो दिखलाया था, किंतु जब ये लोग पहुंचे ड्यूटी से पहुंचे अरे नकुल पहुंचा, देखा जो द्रौपदी हंस करके उनको आव भगत कर रहे थे। तो देखा जी सहदेव और द्रौपदी दोनों हंस करके आगे से पहुंचे, इस प्रकार से अर्जुन यात्रा देखे ये सब पहुंचे। जब सबसे अंत में महाराज युधिष्ठिर से कहते कि ये चारों भाई और द्रौपदी तो पहले से ही वहां पर मौजूद थे, उसी तरह से कृष्ण अपने गोलोक में अपने समस्त परिकरों को लेकर के चले गए। लोगों ने देखा लड़ाई कटाई मराई करते ये मर गए, किंतु कोई भी नहीं मरा। जो नक की बात है ठीक वैसे दिख रहा है, लोग जो अंधे थे अज्ञानी थे जड़ बुद्धि वाले उन्होंने देखा जो लड़कर करते थे सभी मर गए, किंतु लड़का न लड़ाई हुई न मरे न कुछ हुआ, सपने की तरफ भी हुआ और ये सब वहां पर। आत्मा की अमरता पर विश्वास रखना, आत्मा कभी मरता नहीं, और जो भजन करता है वो भी नहीं मरता है कभी, शरीर को बदल करके छोड़ करके अवस्था में चला जाता है। ऐसा लीलावत का महत्व आप लोग समझेंगे, भगवान का भजन करें, भागवत आप लोगों का आराध्य हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करके मैं भी अपना वक्त समाप्त करता हूँ, अभी पुष्पांजलि दे करके और फिर आरती हम लोग करेंगे, इसके बाद यहाँ पर बैठ करके पूर्णाम दे देंगे, आप पूर्णाम देने के लिए प्रसाद दे करके आपको सब अपने गौ प्रेमानंदे
आपने दोनों अपना दिया।